يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعمل الجودة وآله وأصحابه وبارك وسلم سلام وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے دینی بھائیوں اور حاضرین مسجد، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے دنیا بھی ہوتی ہے اور بغیر اس کے اس چیز کا وجود بیکار ہوتا ہے. جس طرح آپ فور ویلر چلاتے ہیں، ایک وہیکل ہے، گاڑی ہے، اس کے لیے کچھ بنیادی پارٹس اور حصے ہوتے ہیں. جیسے اس کے چار ویل ہیں، چاروں سلامت ہونا چاہیے. اگر ایک ویل بھی پنچر ہو جائے، گاڑی بہت اچھی ہے لیکن ایسی کار پر آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. یہ چار ویل بڑے امپورٹنٹ. اسی طرح اس سے زیادہ امپورٹنٹ گاڑی کا انجن ہے. انجن بھی سلامت رہنا چاہیے. اگر چاروں ویل ٹھیک ہیں اور انجن خراب ہو گیا تب بھی آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح ہر چیز کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. یہ مائک ہے، پنکھا ہے، اگر وہ چیزیں خراب ہو گئی تو کتنی بھی اونچی کمپنی کا وہ پنکھا ہوگا، فین ہوگا، وہ آپ کو ہوا نہیں دے سکے گا. یہ مائک میں بھی کچھ امپورٹنٹ پارٹس ہیں، اگر ایک بھی خراب ہو گیا تو مائک کتنی ہی اونچی کمپنی کا، اچھی کمپنی کا ہو گے گا. آپ لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، میری اس بات سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ دنیا کے ہر چیز میں کچھ اہم اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جب وہ صحیح رہتی ہے تو وہ چیز کام کے لائق ہوتی ہے، اور اس کا کوئی اہم پارٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ چیز بیکار ہوتی ہے، منزل پر نہیں پہنچ سکتی، کام نہیں دے سکتی. اے لوگوں، اسی طرح ایک مسلمان ہے، مسلمان کے بھی کچھ اہم کام ہیں. بغیر ان کاموں کے اس کا اسلام سلامت نہیں رہتا. جس طرح ایک کار کے لیے چار ویل اور انجن کا سلامت ہونا یہ کمپلسری ہے، اسی طرح ایک مسلمان فرض کرو اسلامی وہیکل پر سوار، اسلامی کار پر اللہ نے اسے سوار کیا، اس کے بھی چار پہیے ہیں اور اس کا ایک انجن ہے. وہ چار ویل اور چار پہیے کون سے ہیں؟ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہے نماز اور دوسری چیز ہے روزہ اور تیسری چیز ہے زکات اور چوتھی چیز ہے حج. ये इस्लाम के इम्पॉर्टेंट फराइज हैं। इस्लाम की व्हीकल के लिए ये चार चक्के, चार व्हील और चार पहिए। आप अपनी गाड़ी कितनी भी ऊंची मॉडल की लाओ और एक पहिया उसका निकल गया या पंचर हो गया तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसी तरह इस्लाम की गाड़ी में अल्लाह ने चार पहिए लगाए हैं जिसको हम अमल कहते हैं। एक नमाज, दूसरा रोजा, तीसरी तरजीज या जकात और चौथी चीज है। जिस तरह कार के अंदर ईमान सबसे, वो इंजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही इंजन है असल। इसी तरह मुसलमान के लिए चार विल भी चाहिए और ईमान भी चाहिए। अगर ईमान और अकीदा सलामत नहीं है, अकीदा खराब हो गया है, तो चारों चक्के कितने भी अच्छे रहेंगे, डनलप कंपनी का ट्यूब टायर डाल दो, वो कार बेकार है। इंजन अच्छा होना चाहिए और फिर इंजन भी अच्छा हो तो इंजन के लिए भी एक चीज बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको कहते हैं ईंधन, डीजल या पेट्रोल। अच्छे से अच्छा इंजन हो और उसमें न डीजल हो न पेट्रोल हो, वो आपका इंजन काम देगा नहीं देगा। इसी तरह ईमान का इंजन मुसलमानों की कार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन इस इंजन के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है, उसका नाम है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल का ईंधन और पेट्रोल अगर ईमान में नहीं है तो ये इंजन कितना भी शेर को मारते रहो, न ये घूम करेगा, न काम करेगा, न हिलेगा, न चलेगा। ये इतना अच्छा मॉडल, 1 करोड़ रुपए की कार, ये चल क्यों नहीं रही है? तो मैकेनिक कहेगा इसकी टंकी खाली है, टैंक में 1 लतरा नहीं पेट्रोल है न डीजल है, वो क्या चलेगी? इसी तरह कितना अच्छा कलमा पढ़ रहा हो, कितनी अच्छी नमाज हो, खूब रोजे रख रहा है, सारे काम करता जा रहा है, बहुत अच्छा है, ये मुसलमान बड़े ऊंचे मॉडल का है। लेकिन अगर मोहब्बत रसूल खाली है उसके इंजन में से, तो मदीने के सरकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला सुनो। दुनिया का की कार का मैकेनिक जो फैसला करता है बताता है, आप उसे मानते हैं, लेकिन ईमान के कार और इंजन का फैसला न तुम करो न हम करो करें, ये तो वो करेंगे जो गुंबद सदरम में आराम फरमाने वाले हैं। वो इरशाद फरमाते हैं, ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैह मिन वालिदिही व वालिदिही व नासे अजमईन। सरकार फरमाते हैं वो मुसलमान मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत उसके दिल में, उसके मां बाप आल औलाद और सारी दुनिया जहां से ज्यादा मोहब्बत ना हो। सरकार फरमाते लाख मोमिन हो, वो मोमिन हो नहीं सकते। वो कार बेकार है, वो कलमा बेकार है, वो सजदे बेकार है, अगर मोहब्बत रसूल का डीजल और पेट्रोल नहीं डाला है तो मुस्तफा ने साफ इनकार कर दिया है जो मुसलमान दूर नहीं सकता। अब आप अपने आप को गवर्नमेंट के रजिस्टर में डॉक्यूमेंट्स में अपने को मुसलमान लिखवाओ, अपनी जबान से मुसलमान कहो। रसूल कहते हैं मुसलमान नहीं है तो क्या अपने कौन तुमको पूछने वाले? अभी इस पॉइंट पर आपने गौर किया, हमारी दाढ़ी मुसलमान नहीं है, ये पगड़ी मुसलमान नहीं है, ये जब्बे मुसलमान नहीं है, ये सजदे मुसलमान नहीं है, रसूल की मोहब्बत ही ईमान की हिफाजत और सलामती का। हमारे आपके फैसले से, लोगों के कहने से हम मुसलमान नहीं है। अल्लाह कहते कि ये मुसलमान है, नबी कहते मुसलमान है, دنیا سنو پرانے پھٹے کپڑے میں پگڑی ہمارے سر پر نہیں ہے, جبا نہیں ہے, مصطفیٰ کہہ دے یہ میرا ہے تو خدا کی قسم جنت کے دروازے اسے لیے بڑی بڑی مسجدیں بنا دے, کتابیں لکھ دے اور نبی کا مصطفیٰ بن جائے, نبی فرما دے جو میرا بے ادب ہے دنیا کے کارنامے اسے لیے کوئی کام اور کارآمد نہیں. آج لوگ صرف عمل پر فیصلہ کرتے ہیں, بہت اچھا آدمی ہے, بہت نیک ہے, یہ نہیں دیکھتے اس کے عقیدے میں خرابی کیا ہے. یہ سب سے بڑا فالٹ اور اس زمانے کا یہ سب سے بڑا فراڈ ہے. یہ ظاہری کام کچھ نہیں کرے گا. آپ کی کار میں اگر پنچر والا چکا ہے اور اس کا پنچر بنا دیا گیا ہے, پرانا ہے, کھس گیا ہے انجن اور اس میں ایندھن, اگر یہ دونوں ہے تو کیسے بھی کھینچ کھانچ کے منزل پر پہنچا دے گی. اسی طرح ہمارا عمل اگر کہیں پنچر ہو گیا ہے اور مشرق احمد رضا نے اس کا پنچر بنا دیا ہے تو پرانا صحیح, عیسا پیٹا صحیح, انشاءاللہ جنت کے گہری میں ہم پہنچ جائیں گے. کیونکہ ڈیزل ہے, انجن ہے, یہ دونوں پرفیکٹ ہونا چاہیے. پھر یہ باہر کی چیزیں بھی ہمارے لیے کارآمد ہے. نماز روزہ یہ بھی بڑی امپارٹنٹ ہے اور سب سے امپارٹنٹ عقیدہ ہے. مسلمان عقیدے پر دھیان دے کر وہ نمازیں پڑھو, نماز بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اور عقیدہ سلامت نہیں ہے اور لوگ یہ کہہ دیتے ہوئے عقیدے وقیدے کے چکر میں مت پڑھو, یہ سب مولانا لوگوں کے جھگڑے ہیں, نماز پڑھو نماز پڑھو جنت مل جائے گی. سنو گرے نماز کر دو. ہماری زبان ایمان نہیں ہے, ہمارا فیصلہ ایمان نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ تو مانو گے, رسول کا فیصلہ تو مانو گے, اگر وہ فیصلہ نہ مانے تو مسلمان کا ہے. اور سنو قرآن کا فیصلہ, مانے لتن ناسے بتن تسلا نارن خامیا. کلیئر کٹ اللہ نے اپنا ججمنٹ دنیا میں سنا دیا ہے قرآن کے ذریعے. نہایت یاد رکھنا, قرآن میں جا کے ترجمہ دیکھ لینا, تیسرے بارے میں ملے گا عامل تم ناشے پر تم کسرا نارا نام یا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن بہت سے وہ لوگ آئیں گے عامل تم, عمل بہت پرفیکٹ ہوگا. سب قرآن فرماتا عامل تم عمل والا, عمل میں کوئی مشکل, کلام کرنے کا موقع اور گنجائش نہیں ہوگی. عامل کون بہت بڑا عمل والا عامل ہوگا. اور دوسرا اس کا کیریکٹر نام سے بدون, بہت اس نے خدمت کی ہے, بہت محنت کی ہے, عمل بھی ہے, دین کی محنت بھی ہے, یہ دونوں کام اس کے بڑے پرفیکٹ ہیں. قرآن بھی اقرار کرتا ہے یہ جو کام اس کے بڑے مضبوط عامل کون نام سے بدون. لیکن اللہ کا ججمنٹ سنو, تسلا نارن حامیا, اس کو اللہ تعالی جہنم کے بڑھتے ہوئے انگارے میں دھنسا دے گا. یہ اوپر ہی سے سینکا نہیں جائے گا, اندر تک اسے دھنسایا جائے گا. عمل گیا کدھر, محنت گئی کدھر, یہ سب ویسٹ کیوں ہو گئے؟ یہ تو رب سے پوچھو کیوں ویسٹ ہو گئے. وہی جس نے اپنے عقیدے کا خیال نہیں رکھا ہے, ایک کے پیچھے چلتا رہا, نبی کو اپنے جیسا کہے, غیب کا انکار کرے, مر کر مٹی میں ملنے والا بتائے اور بولے عمل بہت اچھا ہے, چلو یہیں سے جنت ملے گی. رب نے سب کا بریل واش کر دیا ہے. عامل تم ناشے تم, اے مسلمان صرف عمل پر مجبور مت ہو جانا, دین کی خدمت کرنے پر اعتماد مت کرنا. جہنم تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے, جب تک کہ میرے حبیب کی محبت دل میں نہیں ہوگی تمہارا عمل کام نہیں ہے. یہ نبی کا بھی فیصلہ ہے اور میں نے کسی ادھر ادھر کی کتاب کی بات نہیں کی ہے, قرآن کی بات کی ہے. مولانا اپنی طرف سے لکھ دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, اس پر کریٹیسائز نہیں کی جا سکتی. حضور نے جو بخاری مسلم میں فرمایا ہے اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اللہ کا بھی پیغام یہی ہے,
नबी का पैगाम भी यही है। इसलिए दोस्तों हम अमल की दुनिया में भी चाको चौबंद रही, हमारी नमाज से नहीं छूटनी चाहिए, रोजा रमजान आ रहा है, गर्मी की शिकायत मत करो, इससे बड़ी गर्मी जहन्नम की गर्मी है, इससे भयानक गर्मी कयामत की गर्मी है। उस गर्मी से बचना है तो इस गर्म दिनों में रोजा रखकर अपने नबी अपने रब की रहमत को अपने पास अपने सीने से लगा, काम की शिकायत मत करना, यानी ड्यूटी पर जाना रहता है, हमें ये फुर्सत नहीं मिलती, वो फुर्सत नहीं मिलती, कितना बड़ा गजब है कि आज मुसलमान को फुर्सत मिलती है तब नमाज पढ़ता है, छुट्टी के दिन रोजा रखता है। सोचो तो सलाह हम कैसे दिवालिया बन गए हैं। अल्लाह ताला ने रोजाना आपको कितने घंटे दिए आप बताइए, वो भी नहीं मानते, 24 घंटे आपको रोज डेली रब ने अता फरमाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 24 घंटे आपको दिए और 5 वक्त में आपका वक्त कितना लगता है, फजर की नमाज पढ़ो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट जोड़ के जाओ, जहर की नमाज पढ़ने में कितना लगेगा, अरे आधा घंटा लगता है, चलो आधा घंटा 15 मिनट 45 मिनट हो गए, असर की नमाज में 15 मिनट कुल कितने हो गए, 1 घंटा हुआ ना। अब मगरिब की नमाज में आधा घंटा ले लीजिए 1.5 घंटा हुआ, और ईशा की नमाज में ज्यादा लगता है, चलो 1 घंटा दे देते हैं कुल कितने हो गए, 2.5 घंटे हुए ना। अल्लाह ताला ने 24 घंटे आपको दिए और अपने बंदों से कहता है कि हे बंदो, ये 24 घंटे अगर इबादत में गुजारना चाहते हो तो 2.5 घंटा मुझे दे दो, तुम्हारा 24 घंटा इबादत हो जाए। अल्लाह ने 24 घंटा दिया वो भी उसी का है, 2.5 घंटे चलो 3 घंटे हम मान लेते हैं, 3 घंटे तुमसे मांगता है और 21 घंटे तुम्हें अता फरमाता है, इस कौम को क्या हुआ है कि अल्लाह के 24 घंटे को बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जिसने 24 घंटा डेली आपको अपनी नेमत अता फरमाई है उसमें से 3 घंटा नहीं निकालते, इस जुल्म नहीं तो क्या है, ऐसा विश्व किस काम का, ऐसी पढ़ाई किस काम की, ऐसे एग्जाम किस काम के, दुनिया में रहकर देने वाला जो हकीकी नेमत है उसी को आप राजी नहीं कर सकते। फिर पीर साहब आते हैं बोले रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, बरकत नहीं हो रही, काबिज नहीं, हमारा काबिज ये बाद में काम करेगा, ये सजदे करो अल्लाह की बारगाह में झुको, सबसे बड़ी रहमत का ताबीज ये है, हर घर से बहुसत निकलेगी, हर घर में बरकत आएगी, हर आवारा बेटा इंशाअल्लाह माँ बाप का वफादार बन जाएगा, तुम उसके वफादार बन जाओ दुनिया तुम्हें भी बता दी। ये है मेरे कुरान का पैगाम, ये किसी मौलाना का मैसेज नहीं है जो आपके सामने आ रहा है। अकीदे की सबसे पहले हिफाजत करो, अकीदे की तरफ से आज लोगों का जहन फिर गया है, चलो चंद नमाजें पढ़ने किसी जमात के साथ जाए, खुदा की कसम इतना बड़ा इस जमाने का ये फराज है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता, रब की बारगाह में कसम खा के कहता हूं, अपनी आखिरत पर रहम करो, अकीदे की हिफाजत करो, गुस्ताखों से दूर रहो और फिर से नया छुटा लो। मैं गारंटी नहीं, मैं नहीं, मेरे मुस्तफा गारंटी देते हैं कि रब की रहमत तुम्हारे घरों में काबिला बन करके तो देखो, आज हर तरफ मुसलमान सताया जा रहा है, मुसलमानों की हुकूमत लड़ रहे हैं, कत्ले आम हो रहा है, बड़ी से बड़ी सल्तनत आज देखो चीख रही है दुनिया, मुसलमान को कहीं अंग नहीं है, यहां नहीं वहां नहीं, जहां देखो एक परेशानी है, शरीयत के अहकाम बदले जा रहे हैं, ये हुक्म दिया जा रहा है। अब मुसलमान बेबस है, कुछ नहीं करता, लेकिन याद रख तू बेबस नहीं है, तूने अपने आप को बेबस बना लिया है। अगर बस वाले बनना चाहते हो तो सबसे बड़ी कुदरत वाले रब की बारगाह में झुक जाओ और मुस्तफा की अकीदत पैदा कर दो। सारा पावर तुम्हारे दिल में आ जाए, पावर हाउस से कनेक्शन मजबूत होना चाहिए, तब वहां से करंट आता है। यहां तो गुंबदे खतरा के पावर हाउस से कनेक्शन ही मजबूत नहीं है, लूज कॉन्टैक्ट है, हवा चलती है, ढुकुर ढुकुर होता रहता है। परफेक्ट कनेक्शन होना चाहिए ताकि जिंदगी तुम्हारी चमक दमक वाली रहे। इसलिए इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तय कर लो नमाज पढ़ेंगे, ये तय कर लो अपने अकीदे की हिफाजत करेंगे, ये तय कर लो गुमराहों से हम दूर रहेंगे, ये तय कर लो अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाएंगे। आज दीन का इल्म तो नहीं सिखाते हैं, बड़े बड़े माँ बाप बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, किस चीज का रोना रोया जाए। इतना बड़ा बच्चा है रोता है, वो अब्बा शर्ट से अपने पैंट से मोबाइल निकाल के दे देते हैं, ले बेटा ताकि मैं महफूज रहूं। लेकिन उनके हाथ में शैतान का आला दे दिया है, दिन भर वो गेम खेलता है। छोटा बच्चा शुरू ही से मोबाइल का आदि बन गया है। आज ये बच्चे जवान होकर सड़क फुटपाथ पर आवारा गर्दी करते हुए दिन रात मोबाइल खेलते हैं। किसी बच्चे के हाथ में कुरान दिया या नहीं? बेटे कुरान पढ़, मोबाइल छोड़ दे। नहीं, आज मोबाइल का ऐसा दौर है, और ये कंपनी जियो ने तो ऐसा आम कर दिया है, नाम जियो है असल में मरो है, सबको मार डाला है, जिंदगी नहीं दी है, मौत हाथ में दे दी है। एक एक घंटा, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे अपनी जिंदगी का वो लम्हा जो रब ने तुझे दिया है इस जियो में बर्बाद करता है। ऐ सुन्नी मुसलमान, ऐ नौजवान, आप तौबा कर, ये मोबाइल तेरे लिए काम नहीं देता है। इस मोबाइल की जगह अरे बगदादी कायदा हाथ में ले ले, कुरान शरीफ ले ले, नबी की सुन्नतों की किताब पढ़, ताकि तेरी जिंदगी कब्र से लेकर हश्र दुबारी बन जाए। कभी सोचते हो अरे दिल रोता है, आंख से खून के आंसू टपकते क्यों, ये बेटा ये कौन कब सुधरे। इस खून के नौजवान का तो अपने को मुसलमान है, कलमा पढ़ना तक नहीं आता, नमाज के सूर्य फातिहा नहीं आती, बाप मर जाता है। अगर इमाम मस्जिद का ना हो तो सही जनाजे की नमाज नहीं हो सकती। डॉक्टर बन गया, जनाजे की दुआ याद नहीं, कब तक तकबीर कही जाएगी, क्या पढ़ पढ़ा जाएगा, कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर साहब हो गए, एमएस बन गए, बड़े से बड़े ऑफिसर बन गए, एक चंगी रुमाल बांध लिया जैसा इमाम और आजू बाजू कर रहा है वो भी कर रहे हैं, बाप की नफरत की दुआ नहीं कर सकता। ये वो औलाद जिस जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज किया, आलिम बनाया है, मैं समझता हूँ झोपड़पट्टी में है, लेकिन वो जन्नत की तैयारियों में सैर करता हुआ है, उसका बेटा उसके लिए मफरत की दुआ करता है, कुरान पढ़ता है। हम किधर जा रहे हैं, तुम दुनिया जरूर संभालो, लेकिन दुनिया संभालने के साथ दीन क्यों नहीं संभालते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते। आज कितना बड़ा दिवालिया मतन है, चलो नमाज में आपको मस्जिद आना है, वजू करना है, ये करना है, आप बोलते फुर्सत नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ने में कितनी देर लगती है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने में किसी को याद है कि नहीं बिस्मिल्लाह करना है, सबको याद है ना, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कुछ ही लोग हैं पाबंदी करते हैं। अरे घर में घर से निकलना हो, शर्ट पहन रहे हो बिस्मिल्लाह कर लो, जूता पहन रहे हो बिस्मिल्लाह पढ़ के, टोपी पहन रहे नहीं पहन रहे हो तो शर्ट पहन रहे हो बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुकान और ऑफिस में जाओ कुर्सी पर बैठो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, दुकान से जब रिटर्न हो शटर बंद करो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, बिस्तर पर लेटो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, हमारी माँ बहने पहली रोटी बनाए तवे पर तो बिस्मिल्लाह डालकर, गोश्त का सालन बनाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, अरे चूल्हा सुलझाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, आखिर इसमें कौन सा टाइम लगता है, चलते फिरते हर काम जो जायज है बिस्मिल्लाह पढ़कर आप कर सकते हैं। जो खाना हमारी माँ बहने बिस्मिल्लाह के साये में पकाई हुई खाना वैसे ही तैयार होगा, लेकिन फर्क ये होगा हमारे नन्हे बच्चे जवान बच्चे उस खाने को खाएंगे जो बिस्मिल्लाह के साये में पकेगा, जो चूल्हा बिस्मिल्लाह पढ़कर माँ ने सुलझाया है, पहली रोटी बिस्मिल्लाह पढ़कर दवा पे तवे पर डाली है, बिस्मिल्लाह पढ़कर के चावल उसने देगची में डाला है, ऐसा खाना जो तैयार होगा प्रेम भी बढ़ेगा और दिल में नूरे ईमान भी अदा करेगा। इसमें कोई फुर्सत की बात है, करना नहीं है, करो तो सबका तुम्हारे लिए फुर्सत ही फुर्सत है, मौका ही मौका है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको ये तौफीक अता फरमाए कि दीन की बातें सुनो और उस पर अमल करो, दीनी किताबें पढ़ो, अल्लाह ताला हम सबको दीन दुनिया की बरकतें अता फरमाए।